छंदों का विभाग भी एक अत्यंत रोचक विषय है, हम इस पर विचार करते हैं। अब अपरिमित छंदों विस्तार में सुविधा की दृष्टि से वैदिक और लौकिक भेद से छंदों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए सभी अध्येताओं को, वैदिक छंदों का तात्पर्य है अपौरुषेय वैदिक साहित्य में अधिकतम दृष्ट वेदागत छंद, तथा लौकिक छंदों का भाव है लौकिक साहित्य में अधिक रूप से प्रयुक्त छंद। वस्तुतः अगर भारतीय आर्ष मनीषा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं है। वैदिक विशेषण केवल इसीलिए लगाया जाना चाहिए कि वो अधिकतम वेद में दृष्ट छंद हैं, और लौकिक विशेषण केवल इसीलिए लगाना जाना चाहिए कि वो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त हैं। वस्तुतः गायत्री आदि छंद मूलभूत हैं तथा इनसे अन्य वर्ण मात्रा वृत्तों का विकास हुआ है, यह पारंपरिक मान्यता है। यहां उपनिदान सूत्र का एक वचन है, छंदसाम आर्षम लौकिकम च। आर्ष का अर्थ वैदिक है। वैदिक छंदों में 7 मुख्य छंद और 14 अति छंद, इस प्रकार कुल 21 छंद हैं। उपनिदान सूत्र के अनुसार इनके नाम हैं, मुख्य वैदिक छंद हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। इसके बाद अति छंद, अति जगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अभिकृति और उत्कृति। अपौरुषेय वैदिक शब्द राशि में उपलब्ध छंदों का प्रतिपादन, जैसा मैंने कहा, मुख्यतः वेदांग, उपांग तथा अनुक्रमणी साहित्य में अनेकत्र है, परंतु पिंगलाचार्य तथा अन्य परवर्ती मनीषियों ने भी अपने लौकिक छंदो विधानों के प्रारंभ में वैदिक छंदों का निरूपण किया है। उन ग्रंथों के परिचय से पहले कुछ वैदिक छंदों की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। वैदिक छंदों की विशेषता सर्वप्रथम तो ये है कि वे अक्षर गणना पर नियत रहते हैं, अर्थात उनके अक्षरों के लघु गुरु के क्रम का कोई विशेष नियम उनमें नहीं है। इसी कारण कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में इसका लक्षण किया है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। परंतु लौकिक संस्कृत के छंदों में वृत्तस्थ अक्षरों की गुरुता और लघुता नियत कर दी गई है, वैदिक छंद इस निबद्धता से मुक्त हैं। यह भी विशिष्ट तथ्य है कि अनेक शताब्दियों के अनंतर वैदिक छंदों से ही लौकिक छंदों का निरंतर विस्तार हुआ है। लौकिक छंदों में 4 चरण होते हैं, परंतु वैदिक छंदों में यह नियम मुख्यतः नहीं है। भारतीय आचार्यों के मतानुसार वैदिक छंदों के लक्षण निर्धारण में इसका विशेष महत्व नहीं होता कि उनमें कौन सा अक्षर लघु है और कौन सा अक्षर गुरु है, परंतु आचार्य शौनक ने ऋक् प्रातिशाख्य के 17वें पटल में इस विषय का भी विचार किया है। उनका महत्वपूर्ण कथन यह है कि 8 अक्षर के पाद अर्थात गायत्र पाद में और 12 अक्षर के जागत पाद में उपोत्तम अर्थात अंतिम से पहला अक्षर लघु होता है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे जो वैदिक छंदों के आचार्य थे उनको भी यह स्पष्ट रूप से अनुगत था कि किस प्रकार आगे चलकर लघु गुरु की व्यवस्था छंदों के विस्तार की दृष्टि से करनी होगी। इसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया। इसी प्रकार इस 10 अक्षर के वैराज पाद में तथा 11 अक्षर के त्रैष्टुभ पाद में उपोत्तम अक्षर अर्थात अंतिम से पहला अक्षर गुरु होता है। इसे ऋग्वेद प्रातिशाख्य में वृत्त की संज्ञा दी गई है। शौनक का यह कथन ऋग्वेदीय छंदों से सुसंगत होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार के तथ्यों का आविष्कार अपने अनुशीलन के बल पर किया है। प्रत्येक संहिता के छंदों का वर्णन अनुक्रमणियों में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के छंदों का निर्देश सर्वानुक्रमणी में अत्यंत प्रामाणिकता से किया है। प्रातिशाख्यों में विशेषतः ऋक् प्रातिशाख्य के 16 से 18 पटल में, तीन पटलों में छंदों का विस्तृत विवेचन किया गया है। पिंगल के ग्रंथ में वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का विशेष वर्णन है। ये ग्रंथ वैदिक छंदों के आधार ज्ञान के लिए विशेष मननीय है। वैदिक छंदों में अक्षरों के गौरव लाघव पर ध्यान न देकर उनकी संख्या का विचार किया गया है, ये मुख्य है। कभी कभी अन्य पादों के अक्षरों से के समसंख्यक होने पर भी एक पाद में कभी संख्या कम हो जाती है और कभी अधिक दिख जाती है, परंतु यह अनियमित नहीं है, नियम से ही इस संख्या का विचार है। एक अथवा दो अक्षरों की अधिकता अथवा न्यूनता के लिए छंद परिवर्तित नहीं होता, इससे उसके स्वरूप की हानि भी नहीं होती। यदि किसी एक छंद का एक अक्षर कम हो तो उसे निचृत संज्ञा से अभेद किया जाता है और एक अधिक हो तो उसे भूरिक विशेषण से कहा जाता है। एकाधिके नैकेन निचृत भूरिजौ, यह पिंगल का सूत्र है। उदाहरणार्थ नियमतः त्रिपदा अष्टाक्षरा गायत्री के अक्षरों की संख्या एक पाद में 8 और तीन पादों के अनुसार 24 है, परंतु 23 अक्षरों की गायत्री निचित गायत्री और 25 अक्षरों की गायत्री भूरिक गायत्री कही जाती है। इसी प्रकार दो अक्षरों की कमी वाले छंदों को विराट तथा दो अक्षरों की अधिकता होने पर स्वराट विशेषण से उसे बोधित किया जाता है। इसके लिए पिंगल का सूत्र है द्वाभ्याम विराट स्वराजौ। अतः विराट गायत्री 22 अक्षरों की और स्वराट गायत्री 26 अक्षरों की होती है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी है, एकद्यूनाधिका सैव निचृत ऊनाधिका भूरिक। इस वैदिक छंदों व्यवस्था के कुछ और मुख्य नियम हम जान सकते हैं। कभी कभी अनुभूति होती है कि छंद एक अक्षर के अभाव में पंगु जैसा हो गया है। ऐसी दशाओं में छंद को नियमबद्ध करने के अभिप्राय से एक अक्षर को दो अक्षर बना देने की व्यवस्था सर्वानुक्रमणी में स्पष्टतः की गई है। इसका पारिभाषिक शब्द है व्यूहन और इसका सर्वाधिक प्रयोग आज समाज के लिए गायत्री छंद में जो एक वर्ण की कमी पड़ती है उसको व्यूहन के द्वारा हम गायत्री छंदस के ऋचा उसको बनाते हैं और उसका नियम, उसके नियम के लिए सूत्र है पादपूर्णार्थम क्षय प्रसंयोग एकाक्षरी भावान व्यूहेत। अर्थात पादपूर्ण के लिए क्षय प्रसंयोग माने यकार वकार के संयोग तथा संधिदन्य एकाक्षरों को पृथक कर देना चाहिए। उसके कुछ नियमों को यहाँ, कुछ उदाहरणों को यहाँ स्पष्ट करते हैं। जैसे यण संधि के द्वारा अगर यकार वकार है तो उसे पृथक कर मूल दोनों अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। यथा त्रिपदा उष्णिक के उदाहरण में दिए गए मंत्र के दूसरे चरण पिबाति सौम्यम मधु में 8 अक्षरों में एक अक्षर की कमी है, अतः पादपूरण के लिए सौम्यम के स्थान पर सौम्यम इस प्रकार पाठ किया जाता है। जगती के अंतिम चरण में द्युमत का द्युमत तथा जैसा मैंने बताया सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र के मंत्र में वरेण्यम के स्थान पर वरेण्यम इस प्रकार व्यूहन करके उसके अक्षर संख्या का परिमाण नियत किया जाता है। इसी प्रकार वकार का पृथककरण भी होता है, जैसे स्वह का सुह, रेफ का पृथककरण भी होता है। तदिंद्र है ऋग्वेद के 7वें मंडल की के 19वें सूक्त की दूसरी ऋचा है त्वम ह तदिंद्र, उसमें भी एक वर्ण के पूरण के लिए व्यूहन के लिए तदिंद्र इस प्रकार व्यूहन करके उसका अक्षर संख्या सुगठित की जाती है। गुण तथा वृद्धि संधियों में भी इसी प्रकार व्यूहन का विधान है। ज्येष्ठ के ऋग्वेद के 7वें मंडल के 65वें सूक्त की पहली ऋचा ज्येष्ठ शब्द को वहां पर जयिष्ठ करके व्यूहन किया जाता है, धेष्ठ शब्द को धयिष्ठ और प्रब्रह्मयी त्विति 7वें मंडल के 36वें सूक्त की पहली ऋचा, इसमें ब्रह्म एतु इति इन प्रकार इस प्रकार व्यूहन के द्वारा अक्षर संख्या पूर्ति होती है। एकार तथा ओकार के अनंतर लुप्त अकार को भी पुनः स्थापन करके उच्चारण करना चाहिए, ये सूत्रों का निर्देश है। जैसे इंद्रम वाजेशु नो व, इसमें नो अव, ये दोनों पृथक पृथक व्यूहन करके अक्षर संख्या की पूर्ति होती है। इंद्रम सखायो नु संरभध्वम, में सखायो नु में अकार का पृथक उच्चारण करके अक्षर संख्या की पूर्ति होती है। दीर्घ संधि में भी उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन करना चाहिए, यह भी निर्देश है। इसका उदाहरण है वदन ब्रह्मा वदती वनीयान, ऋग्वेद के दशम मंडल के 117वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इसमें ब्रह्मा अवदती, यह अलग अलग करके व्यूहन के द्वारा इसकी अक्षर संख्या की पूर्ति होती है। स्थूल रूप से कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के समस्त मंत्रों के छंदों का निर्देश किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद में छंदों की संख्या प्रायः इस प्रकार है, गायत्री छंद के 2467 मंत्र, उष्णिक छंद के 341 मंत्र, अनुष्टुप छंद के 855 मंत्र, बृहती छंद के 181 मंत्र, पंक्ति छंद के 312 मंत्र, त्रिष्टुप छंद के 4253 मंत्र और जगती छंद की ऋचाएं हैं 1358। इनका पूर्ण योग 9667 बनता है। लगभग 300 मंत्र अति जगती, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि आदि अन्य विविध छंदों में निबद्ध हैं। एक बता ऋचाएं केवल 6 तथा नित्य द्विपदा 17 ऋचाएं हैं। इस सूची पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है, इसके अनंतर गायत्री का स्थान आता है। गायत्री में ऋग्वेद का लगभग 1/4 अंश उपलब्ध है। जगती भी इसके अनंतर आती है और इससे यह ज्ञात होता है कि त्रिष्टुप, गायत्री और जगती, यह तीन वैदिक संहिताओं के महत्वपूर्ण देवादिप्रिय यागोपयोग्य छंद हैं। वेद में प्रयुक्त छंदों में प्रायः लघु गुरु मात्राओं का अनुसरण नहीं किया जाता, ये पहले ही हम जान चुके हैं। केवल अक्षरों की गणना की जाती है, फलतः समस्त वैदिक छंद अक्षर छंद ही हैं। इनके दो मुख्य भेद हैं, पहला है केवल अक्षर गणनानुसारी छंद तथा दूसरा पादाक्षर गणनानुसारी छंद। प्रथम प्रकार के छंदों में केवल अक्षर गणना की जाती है। जिन छंदों में पाद के विभाजन की आवश्यकता नहीं रहती वे केवल अक्षर गणनानुसारी छंद माने जाते हैं। द्वितीय प्रकार के छंदों में अक्षरों के पादों में नियमतः विभक्त होने की व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पाद में स्थित अक्षरों की गणना पर आग्रह रहता है, इसीलिए वे पादाक्षर गणनानुसारी छंद कहे जाते हैं। यहाँ अक्षर का तात्पर्य स्वर से है। हम प्रायः अक्षर का तात्पर्य व्यंजन भी लेते हैं, पर जो वैदिक व्यवस्था है और जो छंदों की व्यवस्था है उसमें अक्षर का तात्पर्य स्वर माना जाता है। वैदिक छंदों के मुख्य भेदों के विषय में एक मत नहीं है, परंतु समस्त वैदिक छंदों की संख्या 26 मानी गई है। इनमें आरंभिक 5 छंद वेद में प्रयुक्त दृष्टिगत नहीं होते, उन्हें छोड़ देने पर अवशिष्ट छंदों को हम 3 सप्तकों में विभक्त कर सकते हैं। प्रयुक्त होने वाले छंदों में गायत्री छंद प्रथम छंद है, जिसके प्रत्येक पाद में 6 अक्षर होते हैं अक्षर गणना के अनुसार, लेकिन अगर उनको 3 पाद हों तो 8 अक्षर के पाद वाली गायत्री कही जाती है। जब 21 छंदों की गणना हम करते हैं, गायत्री के पूर्व के 5 छंद और उसके बाद के 21 छंद, इस प्रकार 26 हैं, तो इसलिए जो प्रथम सप्तक है वो गायत्री से ही प्रारंभ माना जाता है। इसके पूर्व के 5 छंद गायत्री पूर्व पंचक के नाम से हम जान सकते हैं। इनके नाम हैं गायत्री पूर्व 5 छंदों के नाम, माँ पहला छंद है, और इसकी अक्षर संख्या है 4, प्रमा की अक्षर संख्या है 8, प्रतिमा की अक्षर संख्या है 12, उपमा की अक्षर संख्या है 16 और समा की अक्षर संख्या है 20। ये नाम ऋग्वेद प्रातिशाख्य में हैं, इनके अन्यत्र दूसरे नाम भी हैं, और यही नहीं लौकिक साहित्य में भी एक और दो अक्षर के और चार अक्षर के छंद हैं और उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य भी इन्हीं से इसी क्रम से प्रारंभ होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक वर्ण के को भी हम छंद में लेकर और उसके बाद उसके द्वारा पद्य बना सकते हैं। हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य के अनेक आचार्यों ने एक वर्णात्मक पाद से ही अपने छंदोज्ञान का प्रारंभ किया है, अपने पुस्तकों का प्रारंभ किया है, और उसका उदाहरण है उसका प्रथम श्री छंद है किन्हीं किन्हीं आचार्यों के नाम के अनुसार, और उसके उदाहरण में वो श्री शाह पातु, श्री एक वर्ण का एक छंद और वो एक पाद हो गया, शह जो है वो दूसरा पाद हो गया और पा तीसरा पाद हो गया और तू चौथा पाद हो गया। इस प्रकार केवल 4 अक्षरों में उन्होंने एक छंद पूरा कर लिया और पाद विधान के अनुसार भी इसकी गणना हो गई। तो ये भारतीय साहित्य की विशेषता है, संस्कृत साहित्य की विशेषता है कि एक वर्ण को भी छंद पाद मान करके और उसके अनुसार वो गेय छंद बन जाते हैं और वो 400 वर्णों तक के छंद भारतीय संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, एक से लेकर 400 वर्णों के पाद तक के छंद उपलब्ध हैं, ये इसकी विशेषता है। अन्य ग्रंथों में इन गायत्री पूर्व पंचक के नाम भिन्न हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में भी 14वें अध्याय में इन्हें उक्त, अत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा तथा सुप्रतिष्ठा के नाम से कहा गया है। मुख्य छंदों के जो सप्तक हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्तक, उनमें नाम प्रायः 7 छंदों के सर्वत्र समान हैं। उनके नाम है गायत्री छंद, सबसे पहला गायत्री छंद है। अब हम परिचय की ओर आते हैं। गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है। उष्णिक छंद इसके बाद दूसरा है, वो 28 अक्षरों का होता है। त्रिष्टुप छंद 32 अक्षरों का होता है। उसके बाद बृहति 36 अक्षरों का होता है। पंक्ति 40 अक्षरों का होता है। त्रिष्टुप 44 अक्षरों का होता है और जगति 48 अक्षरों का होता है। ये 7 मुख्य छंद हैं और ये गणितीय विधान के अनुसार, जो अथर्ववेद में पहले मैंने संकेत किया कि चतुरुत्तराणी वैदिक उपदेश ही है कि 4-4 अक्षर अधिक होने पर दूसरा दूसरा छंद हो जाता है, तो यही इसी को मूल मानते हुए छंदशास्त्र के आचार्यों ने 24 अक्षर वाली गायत्री से प्रारंभ करके 4-4 अक्षर बढ़ाते हुए दूसरे दूसरे छंदों की का निर्देश किया। और उसके बाद द्वितीय सप्तक में जो 7 छंद हैं वो अति छंद के नाम से विख्यात हैं। इनकी अक्षर संख्या भी पूर्व की अपेक्षा 4 अधिक होती है। जैसे अति जगती 52 अक्षर, हमने जगती वहां 48 अक्षरों तक मानी थी, उसके बाद 4 अक्षर और बढ़ा देने पर अति जगती। शक्वरी 56 अक्षरों की होती है। अति शक्वरी 60 अक्षरों की होती है। अष्टि 64 अक्षरों की होती है। अत्यष्टि 68 अक्षरों की होती है। धृति 72 अक्षरों की होती है और अति धृति 76 अक्षरों की होती है। इसके लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पिंगल छंद सूत्र ने एक सूत्र बना दिया धृत्यष्टि शक्वरी जगत्यः, उसी में अति शब्द जोड़ करके और उनके 4-4 वर्ण बढ़ा करके उनके लक्षण बन जाते हैं। बहुत सूत्र रूप में उन्होंने इन समस्त 7 अति छंदों का भी निर्देश कर दिया। तीसरे सप्तक में भी 7 छंद हैं, वहां हमने अति धृति 76 तक देखी थी। इसके बाद उससे 4 अक्षर और बढ़ा करके कृति 80 अक्षरों की, प्रकृति 84 अक्षरों की, आकृति 88 अक्षरों की, विकृति 92 अक्षरों की, संकृति 96 अक्षरों की, अभिकृति 100 अक्षरों की और उत्कृति 104 अक्षरों की होती है। ये तृतीय सप्तक के छंद हैं। और इसके लिए भी एक सूत्र है, तान्यवि संव्याप्रेभ्य कृति। केवल इस एक सूत्र से पिंगल ने इन सातों जो तृतीय सप्तक के छंद हैं उनका निर्देश कर दिया कि उस कृति शब्द में अभि वि प्र उपसर्ग लगा करके और चार चार अक्षरों को बढ़ा करके उन छंदों का लक्षण जान लेना चाहिए। उपर्युक्त सप्तकों के विभिन्न नाम भी मिलते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र के 14वें अध्याय में इनके नाम दिए हैं, क्रमशः दिव्य, दिव्येतर और दिव्य मानुष। अभिनव गुप्त ने इस नामकरण का आधार और उसके कारण का संकेत अभिनव भारती में किया है। प्रथम सप्तक के छंदों का प्रभूत प्रयोग देवों की स्तुति के अवसर पर किया जाता है, इसलिए इन्हें दिव्य नाम से कहा गया है, यह उनका आधार है। मनुष्य संबंधी स्तुतियों में प्रयुक्त होने के कारण द्वितीय सप्तक दिव्येतर अर्थात मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिव्य तथा मनुष्य उभय प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने के कारण तृतीय सप्तक दिव्य मानुष नाम से प्रख्यात है, यह उनका अभिमत है। लौकिक संस्कृत के छंदों का विस्तार इन्हीं वैदिक छंदों से हुआ है। संस्कृत के कवियों ने श्रुति माधुर्य तथा संगीतमय आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर वैदिक छंदों के अक्षरों के गौरव एवं लाघव को नियमबद्ध कर दिया है। अन्य लौकिक छंदों के आविष्कर्ताओं का नाम तो प्रायः लुप्त हो गया है, परंतु अनुष्टुप के आविष्कारक महर्षि वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। व्यास के बाणों से विद्ध होकर क्रौंच व्याकुल हो रहा था और उसको देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदयगत शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया और संस्कृत में मानुष काव्य का प्रथम उद्गार इस श्लोक में व्यक्त हुआ। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये लौकिक संस्कृत का प्रथम उद्गार छंद में निबद्ध होकर वाल्मीकि के मुख से प्रादुर्भूत हुआ। वैदिक त्रिष्टुप से ही एकादशाक्षर छंदों का विशेषतः इंद्रवज्रा तथा उपेंद्रवज्रा का उदय हुआ है। जगती से द्वादशाक्षर छंद वंशस्थ आदि की तथा सामगान की अत्यंत प्रिय शक्वरी से वसंत तिलका की उत्पत्ति हुई है, ये आचार्य मानते हैं। इसी प्रकार अन्य लौकिक छंदों का भी उदय इन्हीं वैदिक छंदों से हुआ है, इन्हीं का विस्तार हुआ है। ये केवल वैदिक छंदशास्त्री ही नहीं, जो अन्य छंदशास्त्री हैं उन्होंने भी, सभी छंदशास्त्रियों ने अपने लौकिक छंदशास्त्र के जितने लक्षणकर्ता हैं उन सब ने अपने ग्रंथों में जो छंदों के निरूपण का विभाजन किया है वो सब गायत्री जाति के छंद, त्रिष्टुप जाति के छंद, जगती जाति के छंद और उस जाति में 2500-2500 छंदों को उन्होंने आविष्कृत किया है, 2500-2500 छंदों को लक्षित किया है। लेकिन मूल वही माना है, यह गायत्री जाति का है, ये त्रिष्टुप जाति का है, ये जगती जाति का है, यह अनुष्टुप जाति का है। तो इस प्रकार समस्त जो लौकिक संस्कृत के भी छंद हैं वो सब इन्हीं वैदिक जो सप्तक हैं, तीन सप्तक हैं, इन्हीं के आधार पर प्रवृत्त हुए हैं। और इसीलिए जो मैंने पहले अनुरोध किया कि लौकिक और वैदिक छंदों को पृथक मानना उतना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारे आचार्यों की दृष्टि से भी और संरचना की दृष्टि से भी वैदिक छंदों से ही वर्ण गणना से ही प्रादुर्भूत हुए हैं, विस्तृत हुए हैं।